रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा में 10 भाद्र को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ सांसदों का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुआ तय। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चित्तनारायण आचार्य ने विश्वास मत किया हासिल। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया ने दिया इस्तीफा। नए मुख्यमंत्री के लिए 4 भाद्र शाम 4 बजे तक दावा पेश करने को किया गया है आह्वान। श्रम मंत्रालय और नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ के बीच सहमति। व्यवसायियों ने आंदोलन के सभी कार्यक्रम किए स्थगित। और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में एक होटल में आग लगने से 6 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा में आगामी 10 भाद्र को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ सांसदों का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय किया गया है। इससे पहले सभामुख टोल प्रसाद अर्याल ने सांसद की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री शाह को रूलिंग जारी की थी। सांसदों ने समसामयिक मुद्दों, प्रधानमंत्री के बयानों और सरकार की कार्यशैली को लेकर उठाए गए सवालों का उचित जवाब न मिलने पर सदन का ध्यानाकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में खान तथा खनिज पदार्थ विधेयक 2083 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। इससे पहले 26 सावन की बैठक में गणपूरक संख्या न पहुंचने के कारण इस पर निर्णय नहीं हो सका था। बैठक में महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक और सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी ने बाल बालिका संबंधी पहला संशोधन विधेयक 2083 पेश किया। वहीं मानव तस्करी तथा ओसार पसार नियंत्रण संबंधी पहले संशोधन विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इससे पहले सांसदों ने लगातार बारिश के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई जनधन की क्षति पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने जोखिम वाले बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने, प्रभावितों का तत्काल उद्धार और राहत तथा घायलों के उपचार की मांग की। सांसदों ने बताया कि रोलपा के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 2 सप्ताह में भूस्खलन से 22 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने लापता लोगों की तलाश तेज करने और प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन से सड़क, पेयजल और बिजली संरचनाओं को हुए नुकसान तथा लंबे समय से जारी एलपी गैस की कमी पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। विदेश में मृत नेपाली नागरिकों के शव नेपाल लाने में हो रही देरी और जाजरकोट भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के मुद्दे पर सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सरकार को 3 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में संक्रामक पशु रोग नियंत्रण विधेयक 2083 को दफावार चर्चा के लिए विधायन व्यवस्थापन समिति में भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव ने कहा कि युवाओं के पलायन को रोकने और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नई रोजगार नीति और कानून बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार मूलक कौशल, उद्यमशीलता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक से जुड़े प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है। बैठक में सांसदों ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने तथा आम नागरिकों को खाना पकाने की गैस आसानी से उपलब्ध कराने की मांग भी की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 3 भाद्र को दोपहर 1:15 पर होगी। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चित्तनारायण आचार्य ने प्रदेश सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। आज हुई मतदान प्रक्रिया में उनके पक्ष में 45 और विपक्ष में 26 मत पड़े। 83 सदस्यीय प्रदेश सभा में 71 सांसदों ने मतदान किया था। आचार्य को नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनमोर्चा और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का समर्थन मिला। नेपाली कांग्रेस द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री आचार्य ने संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विश्वास मत लिया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन।
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। बागमती प्रदेश के प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा ने नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए 4 भाद्र गुरुवार शाम 4 बजे तक दावा पेश करने का आह्वान किया है। संविधान के अनुसार प्रदेश सभा में 2 या 2 से अधिक दलों के समर्थन से बहुमत जुटाने वाले सदस्य मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेकपा एमाले द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय और नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ के बीच सहमति के बाद व्यवसायियों ने अपने सभी आंदोलन स्थगित कर दिए हैं। सरकार और व्यवसायियों ने वैदेशिक रोजगार को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए वैदेशिक रोजगार कानून और नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर सहमति जताई है। संघ की ओर से रखी गई 15 मांगों में से अधिकांश को कानून और नियमावली संशोधन की प्रक्रिया में शामिल करने पर भी सहमति बनी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के मानद महारथी का दर्जा प्रदान किया है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति पौडेल ने जनरल सेठ को मानद महारथी का दर्जानित चिन्ह प्रदान किया। नेपाल और भारत के बीच सन 1950 से एक दूसरे के सेना प्रमुखों को यह सम्मान देने की परंपरा रही है। 3 दिवसीय नेपाल दौरे पर जनरल सेठ रविवार को काठमांडू पहुंचे थे। समारोह में उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल सरकार और नेपाली सेना के वरिष्ठ अधिकारी तथा नेपाल में भारत के राजदूत मौजूद रहे। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण ने सुदूर पश्चिम और कर्णाली प्रदेश में आज रात से अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। प्राधिकरण के मुताबिक भारी बारिश वाले क्षेत्रों में खोज और बचाव के लिए 600 से अधिक लोगों को तैयार रखा गया है। इस साल मॉनसून शुरू होने के बाद 2 महीनों में देश भर में बाढ़, भूस्खलन और डुबान समेत 1372 मॉनसून जन्य घटनाएं हुई। इनमें जाजरकोट, ट्रोलपा और बाजुरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 60 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता हैं। काबरे पलांचोक की खानीखोला गांव पालिका 1 सैउथली में जीप दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान खानीखोला 2 की 24 वर्षीय अनिता मोक्तान और खानीखोला 4 की 61 वर्षीय कलक बहादुर माझी के रूप में हुई है। दुर्घटना में घायल 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से उद्धार कर इलाज के लिए धूलीखेल अस्पताल लाया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में जीप का ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटना होने की आशंका की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ में आज तड़के एक होटल में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है कि हादसे में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। होटल मालिक कल्याण पाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बीरभूम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलेश श्रीकांत गायकवाड़ ने पत्रकारों को बताया है कि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 12 लोगों को रामपुर हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने 7 लोगों की मौत का दावा किया है। पुलिस ने अब तक 7वीं मौत की पुष्टि नहीं की है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद होटल में राहत और बचाव अभियान चलाया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा में 10 भाद्र को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ सांसदों का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुआ तय। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य ने विश्वासमत किया हासिल। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया ने दिया इस्तीफा। नए मुख्यमंत्री के लिए 4 भाद्र शाम 4 बजे तक दावा पेश करने को किया गया है आह्वान। श्रम मंत्रालय और नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ के बीच हुई सहमति। व्यवसायियों ने आंदोलन के सभी कार्यक्रम किए स्थगित। और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में एक होटल में आग लगने से 6 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।